يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکن پہنچی اور جو بھوک لگی اور کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غصہ دلانے کا سبب ہو اور دشمن کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام کا اجر لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دے. یہ تھی آیت نمبر 119 سے 121. اس کا عنوان ہے سچے لوگوں کا ساتھ نعمت ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ ساتھ دے دے. دوسرا ٹاپک بھی ہے اس کا اللہ کے لیے آرام دہ زندگی کو چھوڑنا. تعلق باللہ کا عملی ثبوت ہے. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں یہ اور سورت کا بالکل ایک پرائم ٹائم ہے. یہ پوری سورت جو ہمیں سبق سکھا رہی تھی وہ یہ کہ تمہاری پرآسائش زندگیاں تمہیں اللہ کے دین سے دور نہ کر دیں. اللہ کے دین کے تقاضوں کو نبھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم انہیں گھروں میں ان نرم بستروں میں سوتے رہو اور قبر کے اندر سونے کا وقت آ جائے. یہ نرم تکیے تمہیں کہیں اس قبر سے غافل نہ کر دیں کہ جہاں کوئی تکیہ نہ ہوگا. انسان ساری زندگی اگر اس بات کی تڑپ میں گزار دے کہ اللہ یہاں جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہاں وہ ہو جو بہترین ہو, ایسا ہی شخص جو ہے وہ کل اللہ کے ہاں بچے گا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سچے لوگوں کے ساتھ کی بات کی تو حقیقت یہ کہ انسان کی زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے. ہم تنہا نہیں جی سکتے. اس دنیا میں انسان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جو اس کا ذوق ہوتا ہے, اسی کے مطابق اس کے دوست بن جاتے ہیں. اسی کے ساتھ پھر وہ روز اور شب گزارتا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی ڈرنے لگتا ہے. جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی ایمان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے آئینوں میں پہچاننا ہے. ہم اپنے ارد گرد کن لوگوں کو پاتے ہیں. اگر پیچھے بات گزری تھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ, یعنی وہ لوگ جو تمہارے گرد ہیں وہ منافق ہیں, اگر وہ کیفیت ہے تو فوراً اپنے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہیں تو پہلے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ نعمت ہمارے لیے قائم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کو تو ہم سے دور کر دے اور ہم محروم رہنے لگیں. سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا, جن کی زندگی اللہ کے خوف کے اندر رچی بسی ہوتی ہے. اور ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کی جھوٹی چیزوں کے لیے اس جنت کو قربان نہیں کر دیتا. اور ایسا شخص کب سچا بنتا ہے؟ کہ جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑے تو اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے, بھوک پیاس کا مقابلہ کر کے اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈالے. جب اپنے آپ کو تھکا کر وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا عزم کر لے اور دشمنوں کا خطرہ مول لے کر اپنے آپ کو اسلام کی صفوں میں شامل رکھے. اور وہ شخص جو اپنی پرسکون زندگی کو برہم کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینا چاہے, یہی ہے وہ شخص جو سچا ہے. اللہ ہم سب کو سچا بنا دے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے ہم سچے ہو گئے. نہیں, سچے ہونے کی تیاری کی ہے ابھی. سچ تو ہماری عملی زندگی میں دکھتا ہے. اللہ کے دین کے ساتھ نسبتیں ہم جوڑتے ہیں کہ ہم فلاں 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 نیکی کا کام کرنے والے ہیں, لیکن اصل نسبت جڑتی ہے جب وہ نیکی ہماری اپنی ذات پہ آنے لگتی ہے. اور جب تک کوئی اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دیتا اس کو دین سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی کو مکہ میں جو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور مدینہ کے راستے میں جو مشکلات تھیں یہ اللہ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اور ہر اس بندے کو جس کو دین کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اس کو دین کی اصل سمجھ آتی ہے. میں کبھی حضرت خاجرہ جو تھیں ان کی کہانی آپ اکثر سنتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے کہ بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ آئے, عموماً یہی کہانی بیان کی جاتی ہے نا. پھر بیوی حاجرہ اکیلی رہ گئی, پھر بچہ پیاسا تھا, پھر وہ ادھر صفا پہ گئی مروا پہ گئی. میں سوچتی ہوں کبھی کوئی اس وقت حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں سوچتا؟ اس شخص کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے خود کو تنہا کر لیا؟ یہ قربانیاں ہی ہیں جو بندے کو سچا کرتی ہیں. اور انسان اس طرح پھر کھرچ کھرچ کے اندر سے اس کا میل نکلتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کا سہارا بنی ہوتی ہیں, جن چیزوں کے بغیر انسان کہتا ہے کہ میں جی نہیں سکتا, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, پھر جب دنیا کی کسی مشکل میں پڑتا ہے پھر رہتا ہے, تو اللہ کے دین کے لیے کیوں مشکل میں نہ پڑے؟ اور آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک صحابی تھے ابو حیسمہ ان کا نام تھا, انصاری تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جانے کے دن تھے تو میری بھی وہی گو مگو کی کیفیت تھی. خیر سستی ہوئی, نہیں گئے. قافلہ صبح چلا گیا, خبریں ملتی رہتی تھیں کیا ہو رہا ہے. खैर कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी गए, दोपहर हुई, मैं अपने खेत में काम पे चला गया, बाग था इनका। अब जब दोपहर हुई, मेरी बीवी आई, उसने मट्टी पे पानी छिड़का, सायादार दरख्त के नीचे बैठी, मेरे लिए जो रोटी लेके आई थी वो खोली, ठंडा पानी दिया, ताजा खजूर के खोशे थे वो इनको दिए। कहते हैं कि जूं ही मैंने लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालना चाहा तो मुझे अल्लाह के नबी याद आ गए। मैंने कहा कि मैं कैसा हूं, मैं यहाँ इतने आराम में और अल्लाह का नबी धूप में फिर रहा। अब देखिए कि ये मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं आज अल्लाह के नबी से। हम आशिकाने रसूल की बात तो करते हैं, हम अल्लाह के नबी की नाम की नाते पढ़ते हैं। कहते हैं कि वो लुकमा मेरे अंदर नहीं गया कि मैं इतने आराम से बैठा और अल्लाह के नबी दीन के लिए इतनी मुश्किल कर रहा है। वहीं उसको छोड़ा, बीवी से कहा कि सवारी का इंतजाम करो, और मैंने थोड़ी देर में अल्लाह के नबी सल्लम को पा लिया। दूर से कहते कि गर्द उठती आई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह करे ये बुखैसमा हो, और जब मैं वहां गया तो आप इतने खुश हुए मुझे देख के, क्योंकि अल्लाह के नबी के साथ कितने ही लोग क्यों ना हो। अब देखिए कि जिनसे मोहब्बत होती है बंदे का दिल चाहता है कि वो उसके साथ हो। अल्लाह के दीन का सफर, बास लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, इतने लोग तो होते हैं, अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या होगा, आपको क्या पता है आप नहीं आएंगे तो क्या होगा। जो सच्चे दिल से, जो खलूस से अल्लाह के दीन की तरफ आता है, वो तो चाहता है दुनिया का एक बंदा भी इससे पीछे ना रहे, कोई एक बंदा ऐसी नेमत से महरूम ना रहे। ये टेस्ट जो अल्लाह ने मुझे चखाया, ये किसी और को ना कोई चखाए। कभी भी कोई कहता है कि आप बताए कितने लोग आ रहे हैं, मैं कहती हूँ जितने भी आ जाए मुझे वो नहीं दिखते, मुझे तो वो दिखते हैं जो बाहर है, जो नहीं आए, जो कहीं भी नहीं है, जो बिस्तरों में सो रहे हैं, जो ईद की तैयारियों में, जो ख्वाहिशों में फर रहे हैं। जब तक हमें अल्लाह का दीन इस दर्जे पे प्यारा नहीं होगा, याद रखिए उम्मत की हालत नहीं बदलेगी। इसीलिए अगली आयतों में अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत प्लान दिया, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सबके सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करे, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जब के इनके पास आए तो डराएं ताकि वो डर जाए। आयत 122 है, इसका उन्वान है मतलूब तालीमी ढांचा और नसाब। जब गजवे तबूक के अंदर ये हालात हुए कि इतनी जिहाद की फजीलत और इस तरह से बात हुई, तो हर बंदे का दिल चाहने लगा कि अगर आज के बाद कोई जिहाद हुआ तो हम तो सारे निकल आएंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हर मुआशरे में मुख्तलिफ तर्ज के लोग होते हैं और दीन को हर तरह के कामों की जरूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने इसे एक आयत में पूरे इस्लामिक तालीमी इदारे के एक प्लान और उसके क्यूरिकुलम को साबित कर दिया कि किस तरीके से दीन फैलेगा। क्या सारे लोग काम काज छोड़ के किसी मदरसे में दाखिला ले लेंगे? आप सोचिए कि जब हम दीन की बात करते हैं ना, तो इस्लाम की और सीखने की और सिखाने की, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा गैर फितरी बातें कर देते हैं। हर बंदे को ये कहते हैं कि बस तुम आ जाओ, सब छोड़ो। यानी मुझे ऐसे फील होता है कि बाज़ दफ़ा दीन की तबलीग कुछ इस तरह से की जाती है कि ये तस्वुर आने लगता है सारे हॉस्पिटल बंद, सारे डॉक्टर्स अपनी जॉब छोड़ दें, सारे इंजीनियर छोड़ दें, सब काम छोड़ दें, और एक बड़ा कि 25-30 हज़ार 50 हज़ार जितने भी लोग हैं मुसलमान, उनका एक हॉल जमा किया जाए और सबको वहां जमा करके कहा जाए कि पढ़ो, बच्चे तुम्हारे खुद ही पल जाएंगे, घर के काम खुद ही हो जाएंगे। ये दीन नहीं है। इस्लाम जहां हमें इस दीन के इल्म की अहमियत देता है, तो वहां हमें समझ भी देता है। तरीकेकार क्या है जो इन आयतों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा गया कि हर गिरोह में से कुछ लोग निकले, डॉक्टर्स में से कुछ लोग आए, कुछ इंजीनियर्स में से आए, कुछ हाउस होल्ड खवातीन आए, कुछ फुला फुला, और वो सब बैठ के अपनी जिंदगी का कुछ वक्त लगाए, साल 2, 2.5, 3 साल, जो अल्लाह की किताब को समझने और समझाने के लिए इस हद तक काफी हो जाता है कि फिर इंसान के अपना इस्तराब दूर हो जाता है, शक दूर हो जाता है, और दूसरों को पूछना नहीं पड़ता। अब जब ये लोग सीखें, फिर उसके बाद इनका एक हल्का सा ट्रेनिंग सेशन हो कि अब तुमने कैसे सिखाना है या तुमने ये पैगाम दूसरों को कैसे बताना है। जो खुद बोल सके उसको कहा जाए जाओ बोलो, और ऐसे ये चीजें मुख्तात रहना, खुद नहीं बोल सकते ये बोली हुई बात ले जाओ, इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर लो, और इस तरह फिर हर घर में एक छोटा छोटा रस्सा बन जाए। हर बंदा एक जगह नहीं आ सकता। बस दफा जब दीनदारों में ये झगड़े देखती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट तुम्हारे पास क्यों चले गए, ये मेरे लोग तो ये इधर क्यों चले गए, तो आप बताइए कि शहर में तो कितने लोग हैं, कोई क्या एक दूसरे की जगह से ले या दे सकता है? ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब लोग किसी चीज में फायदा पाते हैं ना, वो उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। आप दीन के नाम पे जब लोगों को एक सिंपल दीन देते हैं कि जो उनको अपना दीन लगता है, बात वाज़ेह है। याद रखिए, इस्लामिक स्कूल या इस्लामी तालीमी जो निसाब है ना, उसकी बुनियाद सिर्फ दो चीजें हैं, यानी क्यूरिकुलम इन आयतों में क्या दिया गया है, पहली चीज होती है कुरान और सुन्नत। आप किसी जगह कोई इदारा बनाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, मदरसा खोलना चाहते हैं, और आप इस्लाम की खिदमत के जज्बे से चूर हैं, क्या करें, आप सोचते हैं क्या करूं, इतनी चीजें, ये सिर्फ दो चीजें, पहली चीज कुरान और सुन्नत। अब उसके अंदर वो हर वो चीज हो सकती है जो बंदे की जरूरत की है, और दूसरी चीज हर वो इल्म जो आने वालों की निस्बत से जरूरी हो। मसलन उसकी जुबान क्या है, उसके रहने के स्टाइल, तर्ज़े फिक्र, उसकी नफ्सियात, उसकी साइकोलॉजी, दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि वहां के माहौल में जीने के तरीके क्या हैं। बात वैसे प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि आप सब हम यहाँ मौजूद हैं, हम चाह रहे हैं कि दीन सीखें। हमें क्या सीखना है, कैसे सीखेंगे दीन? सिंपल चीज, कुरान पाक, उसका जो भी मफहूम है अपने लफ्जों में अपनी जुबान में सीखना समझाना, और उसी की वजाहत के लिए सुन्नत, नमाज कैसे पढ़ी जाए, जकात का क्या तरीका है, तौहीद क्या होती है, और इस तरह की बेसिक चीजें, दोनों चीजें दे दी जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज आप लोगों को देनी चाहिए वो क्या है, क्या आप इस सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करें, यहाँ के तकाजे क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं, आप यहाँ के लोगों से कैसे टैकल करें, आप दावा कैसे करें, आप यहाँ की बिजनेस कैसे चलाएं, आप यहाँ रह के कैसे सूद से बचें, आप यहाँ रह के कैसे नाफरमानियों से रहें। ये है पूरा क्यूरिकुलम, दीन और दीन की एप्लीकेशन। जब आप इसको तफक्को और फिक्र के नाम पे कितने मुश्किल उलूम से फंसा देते हैं ना, कि 8-10 साल किए तालिब इल्म को मदरसे से फारिग होने के बाद भी ग्रामर अजबर जुबान पे उसकी माशाल्लाह, वो गर्दाने यूं पड़ते हैं जैसे बच्चे गाने गाते हैं, मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर काम करे उसके मखरज अच्छे, वो खा और हा में फर्क कर सकता है। लेकिन ये जो अगर दूसरी चीज उसकी जिंदगी से महव है ना, कि जिस दीन को तुमने सीखा है वो तुम्हारी जिंदगी में अप्लाई कहाँ होगा, यकीन करें जो 8 साल का बंदा पढ़ के आता है, मैं कहती हूँ वो तो सोना है, सिर्फ उसको एक चीज पढ़ाने की जरूरत है कि अब इस दीन को ब्लेंड कैसे करना है। छोटी सी मिसाल दूंगी कि आप खाना खाते हैं ना, हमारे मुंह में खाना जब जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट लगाते होंगे आप खाने में, मेरा तो ख्याल है 2 या 3 या 4 मिनट भी बहुत होते हैं खाना खाने के लिए। अगर आपको वाकई देर हो रही हो और अगर आप किसी बामकसद जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो खाने पे भी 1-1 घंटा नहीं लगता, 15 मिनट लगा ले आप एवरेज, मुंह में खाना रहा 15 मिनट, तो खाना खा लिए? नहीं, वही खाना जो आपके मुंह में 15 मिनट रहता है ना, वो आपकी फिर एसोफेगस, आपकी फूड की जो नाली, उससे जाके आपके स्टमक में जाता है, वहां ये कई घंटे रहता है, तकरीबन 4-5 घंटे के बाद फिर मैदा जो है वो अंतड़ियों को वो खाना देता है, फिर अंतड़ियों से जाता है, इस तरह वो हमारे जिस्म में कई घंटों तक रहता है। मुंह फारिग हो गया खाना खा के, अब मैदे के अंदर ये खाना जाता जाता क्या आता है, यही हाल इल्म का होता है। अल्लाह क्या चाहते हैं, जो एक जनरल चीज है, असल इल्म लोगों को थोड़े से वक्त में दे दो, बाकी उसको एब्जॉर्ब करना सिखाओ, कुरान सिखा दिए अब एब्जॉर्ब करो, अब इनके दिल पे इसका असर हो, अब इनके जिन में जो सवाल उठे उनका जवाब दो, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके आज के माहौल में कैसे कल के। जब तक अपने माहौल में बंदा जीना नहीं सीखता ना कुरान पढ़ने के बाद, तो वो ऐसे ही है कि खाना तो खूब खाओ और हजम नहीं हो रहा। किसी को अगर स्टमक प्रॉब्लम हो और जरा सोचिए कि आप खाना खा लें और हजम ना हो, आपका दिल चाहता है दोबारा खाने को, आपकी पसंद का खाना कोई सामने ले आए, क्यों नहीं खाते? बस यही मिसाल है आज के हालात की। लोग इल्म सीख लेते हैं, उनके पेट में भरा हुआ है, लेकिन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अभी ब्लेंड नहीं हुआ, अभी वो आगे से जिस्म के अंदर ग्लूकोज बन के फैला नहीं, और इस इंसानियत को नहीं दिया। जो हमारा जिस्म है वो खून के जरिए एनर्जी देते हैं ना, ये काम उम्मते मुस्लिमा से अल्लाह ने करवाना था कि तुम सीख लो, सीख लो 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा लो, उसके बाद अब तुम इस दुनिया में वैसे ही हो जैसे दिल जिस्म में है। हम जो है ना, ये उम्मत वसत है, हम पंप वाला काम करेंगे, इल्म लिया अब इसको पंप करें, जहां बैठे हैं वहां आपके उस पंप से दीन का इल्म जो वो जाएगा, अपने इलाकों में फैलाएं, आप उधर फैलाएं, आप उधर फैलाएं, आप देखेंगे कि चंद सालों की देर है कि हमारा पूरा मुल्क एजुकेट हो सकता है। अगर हम इसको अपने मुल्कों की सतह पे ले, आपको अगर पूरे पाकिस्तान वालों को इल्म देना है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसी सेंट्रल जगह हो जहां पूरे मुल्क के लोग आ जाएं और इकट्ठा सीखें? दुश्मन तो शुक्र करेगा ये इल्म सीखने गए हैं, वो सरहदों पे आके आपके हमला कर देंगे, बीमारियां फैलने लगेंगी, नहीं होगा। तरीकेकार इसका एक सिस्टम है, आज फिर इसकी जरूरत है, कोई एक ऐसा रहनुमा सामने आए कि लोगों के लिए ये प्लान करे, लाजिम करे, ऐसी दर्दमंद किस्म की हुकूमत आए कि जो लोगों को कहे कि ये डॉक्टर थे ना, 100 डॉक्टर हैं इधर, ये 10-10 डॉक्टर्स को हम गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और इन 10 के हम खर्चे उठाएंगे इनके घर के, जाओ भाई तुम पढ़ो, अच्छा ये इंजीनियर्स हैं ये 10 उधर जाए, ये वहां से आए, वो सब ग्रुप पढ़े, वो वापस अपनी सरहदों पे जाए, वो अपने अपने काम करे, बाकी 10 आए, और ये जो गए ये अपने इर्द गिर्द पे छोटी छोटी नदी नाले बने, और ये फितरत का निजाम है, बड़ा समंदर होता है उसमें से दरिया बनते हैं, दरियाओं में से नदी नालियां बनते हैं, फिर वहां से छोटे छोटे चश्मे फूटते हैं, और वहां से छोटी छोटी, अब देखिए कि पानी की कैसे नालियां गुजरती हैं, ये तरीकाकार अगर हमें समझ आ जाए तो आप देखिए ये उम्मत का हाल हो। आज एक बंदे के दुनिया से जाने का वो करीब आ चुका होता है, उसको अभी तक जीने का तरीका नहीं आता, मरने का तो क्या आएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, ए लोगो जो ईमान लाए हो कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास है, और इनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया, सो जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिल में रोक है इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालते कुफर ही में मर गए। और क्या इनको ये दिखाई नहीं देता कि हर साल ये लोग एक बार या दो बार किसी आफत में फंस जाते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं और ना नसीहत हासिल करते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। ये थी आयत नंबर 123 से 127, 123 to 127। इसका उनवान है, कुछ डेफिनेशंस हैं इसके टॉपिक में। पहली है तकवा, बंदे और रब के दरमियान नुक्ताए मुलाकात। तकवा क्या है? बंदे और रब की मुलाकात का नुक्ता, क्योंकि फिर बंदे को हर वक्त रब की मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरा टॉपिक लिखिए, तौबा क्या है? तज़क्कुर के नतीजे का दूसरा नाम। बंदा सोच में पड़ जाता है, तज़क्कुर जितना अपने गुनाहों का एहसास बढ़ता है वही फिर बाद में तौबा की शक्ल में सामने आता है। तीसरा टॉपिक लिखिए, जाहिरी वाकयात को छुपी हुई हकीकतों से मरबूत करो। तीनों को अगर अलग अलग देखें तो तकवा क्या है? इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें एक गहरा उसूल दिया जो बंदे को तकवा सिखाता है, और वो क्या है कि करीब के मुनकिरों से जंग करो। इस लफ्ज को अगर हम देखें ना जो पहली आयत में है, तो पता क्या चलता है कि इस्लाम में जो जिद्दोजहद है वो इंसान के अपने नफ्स से शुरू होती है, इसलिए कि सबसे पहला दुश्मन तो इंसान का अपना नफ्स है। करीब की रुकावटों को दूर करो, इसके बाद दूर की रुकावटों से निपटो। हम जब दूर की रुकावटों को पहले दूर करने लगते हैं ना, अभी अंदर फुल कमिटमेंट नहीं आई, अभी अपने अंदर फुली कन्विंस नहीं हुए, तो हम कहते हैं वो शौहर नहीं आने देते, वो सास का मूड खराब हो जाता है, वो बच्चे नाराज हो जाते हैं, और दिस एंड दैट। सबसे पहला आपका हमला आप खुद हैं। यहाँ तो बात है ना कि करीब के काफिर जो करीब से तंग करते हैं उनको रोको, इससे भी इस्लाम का नज़्म व ज़ब्त समझ आती है कि इस एक सोचे समझे तरीके से दुश्मनों से निपटा जाएगा, ये नहीं कि जिधर दिल चाहा उधर तलवार लगा दे। आप देखिए कि कभी आपने अगर कोई चीज तोड़ी हो तो आप एक खास जगह पे कुल्हाड़ी को मारेंगे ना, तो फिर वो लकड़ी टूटेगी, और कोई लकड़ी को इधर मारे उधर मारे इधर मारे लकड़ी नहीं टूटेगी। यही हाल दीन के अंदर भी होता है कि जब इंसान सबसे पहले अपने नफ्स पे काबू पाता है, फिर उसके बाद वो अपने घर वालों पे काबू पाएगा, फिर करीब, फिर उसके बाद होते होते फिर उसका दायरे कार जो है बढ़ता जाता है। ये कैफियत जब इंसान की जिंदगी में आ जाती है ना, तो फिर वो बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के दुश्मन से डरता है, फिर वो बाहर की रुकावटों का तस्करा करने से ज्यादा अंदर की रुकावटों का शिकार होता है। जितना आपके अंदर तकवा बढ़ेगा उतना आप अपने अंदर की इन रुकावटों पे काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। जितना तकवा होगा उतनी अल्लाह की मदद आएगी। और तकवा क्या है कि बंदे की रब से मुलाकात। ये कैसे? अल्लाह इज वॉचिंग मी, गॉड कॉन्शियसनेस होना। तकवा क्या कि आप अपने रब को हर जगह महसूस करते हैं, कोई दो आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, कोई मुझे चेस कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, और इस एहसास के साथ जब आप जिंदगी गुजारते हैं तो वो तकवा वाली जिंदगी होती है। और उसका तकाजा ही क्या है कि इंसान फिर अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता जाए, अपने गुनाहों को छोड़ता जाए। और दूसरी बात इस हिस्से में जो हमने देखी वो क्या थी कि कुरान पाक को सुन के ईमान वालों के ईमान का भरना और नाफरमानों के बुग़्ज़ का भरना, ये कुरान का एक असर होता है। एक ही कलाम है और उससे दो तरह की ग़िज़ाएं लोग लेते हैं, एक वो है जिसका ईमान बढ़ता है और दूसरा जो है जिनका कुफर बढ़ता है। क्यों? इसकी मिसाल ले लीजिए बारिश से। बारिश आसमान से होती है, ऐसी जगह पे पड़ती है जहां कोई फूल थे, कोई क्यारी थी, कोई ऐसी चीज थी कि खुश्की की वजह से अभी मिडट थी। सूखी मट्टी लगा ले, बारिश वहां डलेगी ना तो आप देखेंगे वहां से सूंधी सूंधी खुशबू आएगी। और वही बारिश अगर कचरे के ढेर पे पड़े तो क्या होता है? गंदगी उठेगी ना। यही फर्क है, जिनके दिल साफ होते हैं ना, खुश दिल, अल्लाह की रजा में जीने की कोशिश में तड़पने वाले दिल, कुरान की बारिश उनके अंदर फुहार की तरह पड़ती है और वहां से खुशबू आने लगती है, کے، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کے تعلقات کے اندر. اس کے برعکس جن کے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، گرج ہوتا ہے نا، تو ان کے دل ایسے ہی ہیں جیسے ٹریش ہے. قرآن سن کے اور کھلتے ہیں، دیکھا یہ کیا، دیکھا تھا یہ بات کیا تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے بعد یہ لوگ تبصرے کیا کرتے تھے، دیکھو بولا کیا باتیں کر رہے تھے، یہ کوئی بات تھی، دیکھو سب دکھاوا ہے، سب باتیں بڑی بڑی باتیں، خام خواہ یہ وہ. اور اس طرح کے الزامات جو منافقین لگاتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آتے تھے اللہ کے نبی کی محفل میں لیکن وہاں سے خیر کی بجائے شر لے کے جاتے تھے. ایسے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کلام کا قصور نہیں. آج یہی قرآن ہے، آپ کو پتا لوگ اسی سے کیا کچھ غلط چیزیں پیش کر رہے ہیں، لوگ اسی قرآن کو بنیاد بنا کے کنٹراڈکشن شو کر رہے ہیں. آج ایسی ایسی ویب سائٹس اور ایسے ایسے میڈیم بن چکے کہ قرآن پاک کے ڈفرنٹ ٹاپکس کی آیتیں دکھاتے ہیں، ایک جگہ یہ کہتے ہیں دوسری جگہ یہ کہتے ہیں. جہاں کہیں آپ کو قرآن میں کہیں تضاد دکھے فوراً مان جائیں یہ میرے علم کی کمی ہے، میں ابھی اس موضوع پہ پہنچ ہی نہیں پایا کہ جو ان دونوں کو جوڑنے والا ہے. تو لہٰذا ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ پھر جھٹکے دیتا ہے، ہر سال ایک یا دو بار چوٹیں پڑتی ہیں. اتنا بڑا اصول ہے اس میں، آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے اس آیت کے حصے کو. آیت نمبر 126 ہے، ہر انسان سے یہ ایک سوال ہے. ہم سب سوچیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایک سال یا دو سال گزر جائے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی حادثہ نہ آئے، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی فوت نہ ہو، کوئی چوری چکاری نہ ہو، کوئی کاروبار کا نقصان نہ ہو. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی ایک مہینہ بھی خیر اور عافیت کا گزر جائے تو بڑی بات ہے. یہ جو مشکل تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جھٹکے ہوتے ہیں نا، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بڑی پیاری یہاں لاجک تھی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے، خدا نخواستہ کسی شخص کو فالج ہو جاتا ہے، سٹروک جس کو بولتے ہیں آج کے دور میں، جب کسی کو سٹروک ہوتا ہے تو کیا اس کو دوائیاں کھلاتے ہیں؟ نہیں، اس کو جھٹکے دیتے ہیں، الیکٹرک شاکس دیتے ہیں. کوئی جسم کا حصہ کام کرنا چھوڑتا ہے نا تو اس کو الیکٹرک شاکس دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان شاکس کے ساتھ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں حصے جو نہیں کر رہے. اسی طرح جب لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفوں کے، بیماریوں کے، دکھوں کے، اولادوں کی نافرمانیوں کے، شوہروں کی طرف سے ظلم و ستم کے جھٹکے دیتا ہے. لو ان کو جھٹکا دو، یہ پلٹ کے آئے، یہ کام کریں، یہ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہو نا فوراً سوچے میں نے کیا کیا ہے، نیٹ کام نہیں کر رہا میں نے کچھ کیا ہے، بجلی نہیں آ رہی میں نے کچھ کیا ہے، یہ میرا بچہ میرے آگے چیخ رہا ہے میں نے کچھ کیا ہے. میں اللہ کی نہیں مانتی، میرے بچے میری نہیں مانتے، میری بیوی میری نہیں مان رہی، اس کا مطلب میں اللہ کی نہیں مان رہا، میرا شوہر میرے ساتھ خوش نہیں، اس کا مطلب کہ میرا رب میرے ساتھ خوش نہیں. اس طریقے سے جس کو ریلیٹ کرنا آ گیا نا زندگی کے معاملوں کو، تو بتائیے کہ اس کے بیکار باتوں کا وقت ہوگا؟ وہ تو ہر وقت اپنے ہی حال میں کھویا رہے گا، یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہ ہوا. اور اسی آزمائش کو پھر اللہ تعالیٰ نعمت بنا دیتا ہے. آزمائش بندے کی استاد بن جاتی ہے جب انسان اس سے کوئی سبق حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. لیکن جو آزمائشیں ہماری زندگی میں آئیں پھر اس کے بہترین قسم کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں، اسی سے پھر توبہ تذکر ہوتا ہے. یہ جو میں نے ٹاپک دیا تھا آپ کو کہ توبہ تذکر کا دوسرا نام ہے، یہ یہی تذکر تھا، یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اچھا یہ اس لیے ہوا، وہ اچھا یہ تھی، اللہ مجھے معاف کر دے اب میں ایسی نہیں ہوگی. یہ ہے تذکر، اپنے گناہوں پہ فکر کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ میں آج توبہ کر لوں گی، میرا یہ کام جو ہے وہ درست ہو جائے گا. لیکن بعض دفعہ لوگ سبق کیوں نہیں لیتے سبق لینے والی باتوں سے؟ اس لیے کہ لوگ مختلف چیزوں کو مربوط نہیں کر سکتے. یہ جو تیسرا ٹاپک آپ کو دیا گیا تھا کہ ظاہری واقعات کو چھپی ہوئی حقیقتوں سے مربوط کرو، یہ یہی تھا کہ ظاہری واقعات جو زندگی میں ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے جا کے دیکھو چھپا ہوا کیا اس کی روٹ میں، پیچھے سے کوئی کنیکشن لوز ہے، پیچھے سے کوئی چیز فیوز ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ تمہاری زندگی میں نقصان آیا. ہم کہتے ہیں ہاں وہ وائرس پھیلا ہوا ہے نا اس لیے یہ ہو رہا ہے. وہ وائرس تو پہلے تم پہ کیوں آیا؟ اس وائرس کو چھوڑو، اپنی زندگی پہ غور کرو، اور انشاءاللہ جس بندے کو یہ عادت ہو جائے گی نا کہ وہ مختلف واقعات کا ربط ڈھونڈ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں خود بخود نصیحت لینے والا بنا دے گا. ضرورت نہیں کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو اس چیز کے اوپر روکے یا ٹوکے. اور آخری آیتیں ہیں سورت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان والی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ ہے آیت نمبر 128 اور 129. دو ٹاپک لکھیں گے، ایک تو بڑا مشکل ہے لیکن لکھنا پڑے گا آپ کو. रसूल की इत्तेबा से दुनियावी जिंदगी का बिगड़ना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुमको कबूल कर लिया है। ये है वो आयत जो पूरी सूरत का ततिम्मा है, आखिरी बात है। अल्लाह के नबी सल्लम एक मुखलिस रहनुमा की सूरत में लोगों की जिंदगियों में आए, लेकिन लोगों ने उस नबी की जिंदगी को अपने लिए तरक्की से रुकने वाला बनाया। नतीजा क्या हुआ कि लोग अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ये सोच के कि हम दुनियावी तौर पे नाकाम रह जाएंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें फनेटिक कहेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखो वो जात जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम करना जो तुम्हारे नुकसान का जरिया, उसका वो तुम्हें हुक्म दे सकती है? जब भी कभी अल्लाह का कोई रसूल दुनिया में आता है ना, तो उससे पहले लोग अपनी ख्वाहिशों के दीन में जी रहे होते हैं, उनकी अपनी पसंद की चीजें होती हैं। अब वो रसूल जब अल्लाह की रहनुमाई में उनको जिंदगी गुजारने का एक ऐसा पैटर्न देते हैं जो उनके जाहरी नक्शे को बिगाड़ देता है, वो बिल्कुल एक नई जिंदगी बन जाती है। आज भी पूरे शौर से कहती हूँ कि अगर आज हम सुन्नतों की रोशनी में जिंदगी बसर करने लगे तो हमारे सारे नक्शे टूट जाएं। वो जैसे स्क्रैच हो जाती है ना चीजें, बच्चों को आपने कभी लोगोस के साथ घर बनाता देखा, तो आप देखिए वो एक अपने तौर पर बना के बैठे होते हैं, वो कहते हैं मम्मी मेरी हेल्प करो, आप कहते हैं ये क्या बनाए, फेंको इसको, पूरा तोड़ते हैं फिर एक एक ब्लॉक अपनी अपनी जगह पे लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो उनको महसूस क्या होता है कि हमारी तो बनी बनाई दुनिया बिगड़ गई, ये तो कोई और दुनिया थी। और मुझे आपका वो जुमला याद आ गया कि आपने कहा कि ये जो रोज कुरान में हम बातें पढ़ते हैं हमें दिखती क्यों नहीं, यानी ये बच्ची मुझे उसे मिली और कहने लगी ये बताएं ये जो रोज हम पढ़ते हैं ये हमें मिलता कहाँ है। और इसी बात की तस्दीक एक और भी मैंने बात किसी की सुनी, वो याद आ गई, कहीं रहते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को कुरान दिए, जब वो कुरान दिए वो ले गए खुशी खुशी, कुछ दिन के बाद आए तो वापस किए, कहने लगे कि हमें ये कुरान नहीं चाहिए, हमें वो कुरान दीजिए जिस पे तुम मुसलमान अमल कर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम कर दे। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये वो कलमा है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी की रिवायत मिलती है कि सुबह और शाम सात सात बार इन कलमात का पढ़ लेना बंदे को दुनिया और आखरत के सारे गमों से बेनियाज कर देता है। और हजरत उमर की मैंने बात पढ़ी कि अगर ये तीन आयतें होती तो मैं इसको एक अलग सूरत बना देता, और असल में ये है पैगाम सूरत का, अल्लाह को काफी समझो। नॉन मुस्लिम काम नहीं आएंगे, बड़ी ताकतें काम नहीं आएंगी, मरूबियत छोड़ दो, मगलूबियत छोड़ दो, गैरों की तरफ देखना छोड़ दो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा। एक दफा बंदा पूरे यकीन से जब ये जुमला बोलता है फिर वो आग में से भी बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इब्राहिम ने जो कलेमात आग में पढ़े थे वो भी इससे मिलते जुलते थे, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। हजरत आयशा पे जब तोहमत लगी थी उन्होंने भी यही कलेमात पढ़े थे, और ये कोई सिर्फ वजीफा नहीं है आपके, अच्छा सात दफा पढ़ना था कि नौ, अच्छा आठ पढ़ना था, अच्छा ये जबर से पढ़ू के जेर से, असल में ये बंदे की अल्लाह सुबहान तआला के साथ एक डीलिंग है कि मुझे तो तू काफी है, जब तू मुझे काफी है तो फिर मैं तेरे लिए क्यों ना बनूं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो बातें हमने इस सूरत के दौरान सुनी सुनाई बताई इसको हमारे अमल में ढाल दे, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता, बातें करके जाके सो जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। कोई अच्छी नीयत करें, मैं आपको चंद सेकंड देती हूँ, इस सूरत में बहुत सारी बातें थी, कोई अच्छी कमिटमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने इस सूरत के पढ़ने के बाद अब इस काम के करने की या इस चीज को छोड़ने की नीयत की है।